Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Svetashvatara Upanishad, Chapter 5 and 6, presented by Swami Sri Atmananda Giriji. Thank you. Om Namah Shivaya.
Hriday mein vidyaman us atma ko tum manan ke dwara, जमीन के अंदर विद्यमान पानी को खनन के द्वारा निकालो तो हृदय में विद्यमान आत्मा को मनन के द्वारा निकालो. मनन और खनन और क्या हो गया ना, कविता हो गई कि नहीं? मनन और खनन. मनन न आत्मभूत देहादि सु अन्नमयाद्य अशेष उपाधि प्रमिलापेन. फिर मनन कैसा महाराज? तो मनन के लिए फिर आगे व्याख्या कर दी है कि आत्मा आत्मभूतेषु माने देहेषु देहादिषु अन्नमयादि अशेष उपाधि. अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय ये उपाधियां हैं. इन सारी उपाधियों को मननेन माने अशेष कोई उपाधि न बचे. बचा तो शेष हो गया, कोई न बचे तो अशेष. तो अशेष उपाधि प्रमिलापेना मननेना सारी उपाधियों को एक दूसरे में विलय करते हुए एक दूसरे में बात करते हुए प्रमिलापेना माने बात करते हुए. अन्नमय कोष को पंच महाभूतों में प्रमिलाप कर दो, बात कर दो तो अन्नमय कोष अलग हो गया कि नहीं? हाँ? इस शरीर में 50% जो मिट्टी है वो पृथ्वी के साथ मिला दो, है ना? ये पृथ्वी का हिस्सा है, ये मिट्टी का हिस्सा है. और इस शरीर में जो 12.5% पानी है वो जल के साथ मिला दो. और इस शरीर में जो 12.5% तेज है वो सूर्य के साथ मिला दो. गर्मी है ना शरीर में, 12.5% गर्मी तेज है वो सूर्य के साथ मिला दो. और इसमें जो 12.5% जो वायु है प्राण आदि पंचवायु वायु वो पवन के साथ वायु के साथ मिला दो. और इस शरीर में जो 12.5% आकाश है उस आकाश को महाकाश के साथ मिला दो. तो देहाकाश और महाकाश की एकता
क्या चीज?
सभी आकाश में तुम्हारा देह नहीं है ना. तुम्हारे देह के लिए जितनी आकाश चाहिए वो 12.5% तुम्हारे शरीर में आकाश है. बस पंचीकरण को याद कर लो, इसी हिसाब से हमने कहा है. इस अन्नमय कोष से बड़ा शरीर बनाने के लिए पंचीकृत पंच महाभूत हैं. पंचीकृत पंच महाभूत में मूल मेटेरियल ये पदार्थ है पृथ्वी. मिट्टी चाहिए, पार्थिव चीज है ये 50%. और क्योंकि पंचीकरण होने के कारण उस मिट्टी में 12.5% और भूतों का अंश है. उसी मिट्टी से तुम्हारा शरीर बना है तो स्वाभाविक रूप में 12.5% और भूत आ चुके हैं. लेकिन पंचीकरण का ही विलय होगा ना, स्थूल भूत स्थूल शरीर का स्थूल भूतों के साथ इस तरह विलय करो. अब दूसरा कोष है मननेन विलय करना पड़ेगा मनन के द्वारा. जैसे पानी खनन के द्वारा निकलेगा इसी तरह मनन मनन के द्वारा इसका विलय करना है. अब दूसरा है प्राणमय कोष, है ना? प्राणमय कोष में कितनी चीज है? 5 कर्मेंद्रिय और 5 प्राण, है ना? अब देख लो ये 5 प्राणों को अपंचीकृत पंच महाभूत जो वायु है अपंचीकृत, ये शरीर पंचीकृत है और वो अपंचीकृत है. हाँ, तो अपंचीकृत जो पंच माने प्राण हैं उनको अपंचीकृत स्पर्श तन्मात्रा जिसको कहते हैं, है ना? अपंचीकृत रूप तन्मात्रा सूक्ष्म वायु के साथ उसको मिला दो. क्योंकि सूक्ष्म वायु के समष्टि रजोगुण से प्राण बना है कि नहीं। अच्छा, कर्मेंद्रियां किससे बना है? अलग अलग व्यष्टि अपंचीकृत पंचमहाभूतों के व्यष्टि रजोगुण से पंच कर्मेंद्रियां बना है। तो जो व्यष्टि रजोगुण के जिस गुण से जो इंद्रिय बना है उसी में विलय कर दो। मान लो तुम्हारा बाकी इंद्रिय कर्म इंद्रिय है, तो बाकी इंद्रिय किस गुण के, किस अपंचीकृत किस भूत के रजोगुण से बना? तेज के अपंचीकृत पंचमहाभूतों में से अपंचीकृत जो तेज है उस तेज के रजोगुण से तुम्हारी बाकी इंद्रिय बनी। तो प्राणमय कोष में बाकी इंद्रिय है कि नहीं? प्राणमय कोष में वाक इंद्रिय है कि नहीं? है, क्योंकि पांच कर्म इंद्रिय पांच प्राण, तो वाक इंद्रिय तो कर्म इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय तो है ही नहीं। इसीलिए जब पंच प्राण को सूक्ष्म प्राण में विलय कर दिया तब इंद्रियों को कर्म इंद्रियों को भी उन उन भूतों में करना पड़ेगा। तो बाकी इंद्रियों को सूक्ष्म तेज तन्मात्रा रूप तन्मात्रा में विलय कर दो। और हाथ को किस में विलय करोगे? कर इंद्रिय को किस में विलय करोगे? क्योंकि कर इंद्रिय कर्म इंद्रिय है। प्राणमय कोष में कर इंद्रिय है कि नहीं? है, कर्म इंद्रिय होने के कारण प्राणमय कोष में है। प्राणमय कोष को विलय करना है तो कर को कहां, कर इंद्रिय को कहां विलय करोगे? प्राण में, ठीक कह रहे हो। पंच प्राण रजोगुण से बना है तो उसी वायु में। तो इसी तरह ये जो कर इंद्रिय है वही उसी सूक्ष्म वायु में विलय करना है। सूक्ष्म वायु का रज अंश से कर इंद्रिय बना, सूक्ष्म तेज के रजोगुण से बाकी इंद्रिय बना। अब पांवों को कहां ये विलय करोगे? पांव भी कर इंद्रिय है, माने वो कर्म इंद्रिय है। पाद को कर्म इंद्रिय कहते हैं। ये प्राणमय कोष का अंग है कि नहीं? प्राणमय कोष का अंग है ये। अब इसको किस में विलय करोगे? सभी को प्राण में करते जाओगे? प्राण नहीं, समष्टि वायु बोलो। प्राण व्यष्टि है, समष्टि वायु है। तो ये पांव को आकाश में विलय करो, इसको आकाश के रजोगुण में। अब तुम्हारा उपस्थ कर्म इंद्रिय की ज्ञान इंद्रिय? कर्म इंद्रिय है, उपस्थ कर्म इंद्रिय है। कर्म इंद्रिय भी प्राणमय कोष का अंग है तो उसको भी विलय करना पड़ेगा। तो उपस्थ को किसमें विलय करोगे? जल के रजोगुण से उपस्थ बना है तो अपंचीकृत जल में विलय करना पड़ेगा। पंचीकृत में नहीं होगा, पंचीकृत में शरीर के अंदर के वायु लिए होगा। अब शरीर के अंदर वायु और सूक्ष्म शरीर के प्राणमय कोष का वायु में अंतर है, फिर ध्यान देना। हाँ, स्थूल शरीर में जो वायु है वो और सूक्ष्म शरीर का जो वायु प्राण, ये अलग अलग है। प्राण अलग है, प्राण के निकलने पर भी स्थूल शरीर में वायु रहता है, तो वो स्थूल शरीर का वायु है। अब वायु जो इंद्रिय है, जहां से हम मल विसर्जन करते हैं जिस इंद्रिय से, उसको वायु बोलते हैं, वो भी प्राणमय कोष का अंग है। उसको कहां विलय करोगे? अपंचीकृत पृथ्वी में विलय करो, क्योंकि अपंचीकृत पंच पृथ्वी के रजोगुण से वायु इंद्रिय, अपंचीकृत जल के रजोगुण से उपस्थ इंद्रिय, अपंचीकृत तेज के अंश से वाक इंद्रिय अपंचीकृत वायु के अंश से, हाथ कर इंद्रिय अपंचीकृत तेज के माने आकाश के अंश से पायु। अब ये जिस जिस से ये उत्पन्न हुआ उसी उसी अपने अपने कारण में लय करना है। अपंचीकृत ये पांचों भूतों के समष्टि रजोगुण से पंच प्राण उत्पन्न हो गए तो उनके सभी उस बांट दो। तो अब क्या हुआ, मनने न विलये न, तो सूक्ष्म शरीर में से प्राणमय कोष का विलय हो गया कि नहीं। अब बचा क्या, तीसरा कोष मनोमय कोष। अब मनोमय कोष में कितनी चीज है, एक चार बोल रहा है, एक पांच बोल रहे हैं। अरे बाबा छह है क्यों बोलते हो, पांच ज्ञानेन्द्रिय और मन, पांच ज्ञानेन्द्रिय और एक मन मिलकर क्या हुआ, मनोमय कोष तो छह हो गए कि नहीं है? तो फिर छह बोलो ना। तो ये मनोमय कोष में छह चीज है और विज्ञानमय कोष में भी छह चीज है। अंतर क्या है, एक में बुद्धि प्रधान है, एक में मन प्रधान है। तो पांच ज्ञानेन्द्रिय मन, मनोमय कोष, पांच ज्ञानेन्द्रिय और बुद्धि विज्ञानमय कोष। अब आप विचार करो, ये दोनों को एक ही बार लय करना है, अलग अलग लय करने की जरूरत नहीं है, समझ गए ना? क्योंकि समष्टि सप्तगुण से अपंचीकृत पंचमहाभूत के समष्टि सत्वगुण से अंतकरण बना, अंतकरण बना तो माने मन भी अंतकरण का, बुद्धि भी अंतकरण का होने के कारण मन को जिसमें लय करोगे उसी में बुद्धि भी लीन हो जाएगा, ठीक साथ में जाएगा। अब जो श्रोत्रेन्द्रिय है वह किससे बना, आकाश के सत्तो गुण से, बोलो। अपंचीकृत पंचमहाभूत आकाश से सत्तो गुण से कान बना, श्रोत्रेन्द्रिय बना, और इसी तरह दूसरा ज्ञानेन्द्रिय है, दूसरा ज्ञानेन्द्रिय त्वचा है ना, त्वचेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रिय किससे बना, अपंचीकृत पंचमहाभूत मध्य वायु के सत्वगुण से त्वचा बन गया है। अब तीसरा इंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय चक्षु, चक्षुरेन्द्रिय किससे बना, अपंचीकृत पंचमहाभूत के तेज के सत्वांश से चक्षुरेन्द्रिय बना। और चौथा रसनेन्द्रिय किससे बना, अपंचीकृत पंचमहाभूत के जल के सत्वांश से रसनेन्द्रिय बना। और पांचवा नाक घ्राणेन्द्रिय किससे बना, अपंचीकृत पंचमहाभूत मध्य पृथ्वी से, सूक्ष्म पृथ्वी से सत्वगुण से घ्राणेन्द्रिय बना। और जो जिससे बने उसी में विलय करो। तब व्यष्टि सत्वांश से ज्ञानेन्द्रियां, समष्टि सत्वांश से अंतकरण। तो मन बुद्धि को समष्टि सत्वांश में मिला दो और पंच ज्ञानेन्द्रियों को समष्टि सत्वांश, व्यष्टि सत्वांश में मिला दो, तो मनोमय कोष और विज्ञानमय कोष दोनों ही विलय हो गए। तो तुम्हारी चार उपाधि गई, अन्नमय कोष गया स्थूल भूतों के साथ, प्राणमय मनोमय विज्ञानमय सूक्ष्म भूतों के साथ चले गए। अब रहा पांचवा आनंदमय कोष, आनंदमय कोष किससे बना बोलो, आनंदमय कोष किससे बना, ये संकोच क्यों करते हो, अविद्या से बना है आनंदमय कोष। आनंदमय कोष अविद्या से बना, अविद्या किसका अंग है, माया का, खत्म हो गया। तो आनंदमय कोष को अविद्या में लय करके अविद्या को माया में बात कर दो, आई नहीं तुम अकेले रह गए कि नहीं, तुम अकेले रहे कि नहीं, यही कहते हैं ये, जैसे जमीन के अंदर पानी है, स्रोत है, दिखता नहीं, खनन है ना गृहते, खनन करोगे मिट्टी आए तो उसको निकाल के अलग करो, पत्थर आया तो उसको निकाल के अलग करो, रेत आया तो कंकड़ आया तो उसको निकाल के अलग करो, रेत आ गया तो उसको निकाल के अलग करो, सबको निकालते बाहर फेंकते, निकालते बाहर फेंकते करोगे तो अंत में पानी का स्रोत मिल जाएगा, पानी गृहते। इसी तरह अंदर पानी की तरह ही अंदर आत्मा छुपा हुआ है। कहां? बोले पंचकोश के अंदर छुपा हुआ है। अब पंचकोश के अंदर छुपे हुए आत्मा को, जमीन के अंदर छुपे हुए पानी को निकालना हो तो खनन करना पड़ेगा, पंचकोश के अंदर छुपे हुए आत्मा को निकालना हो तो मनन करना पड़ेगा। तो मनन की युक्ति क्या है? तो बोले पंचकोश का विवेक करके जो जिसका कार्य है उसी में उसका वाद करना, उसे में लय कर देना, बस इसके द्वारा है। वो तो अंतकरण गया तो चित्ताहंकार बचेगा। तो चित्तमय कोष कहीं बताया है? अहंकारमय कोष बताया है? अहंकार को मन के साथ मिलाते हैं, चित्त को बुद्धि के साथ लेते हैं, इसीलिए अंतकरण में मन और बुद्धि प्रधान है। तो चित्त अहंकार की तो उपयोगिता ही नहीं है ना, इसीलिए 17 चीज माना है ना सूक्ष्म शरीर में। चित्त और अहंकार को अलग करोगे तो 19 चीज मानना पड़ेगा, सूक्ष्म शरीर 19 अवयव का मानना पड़ेगा। और क्योंकि चित्त को बुद्धि में, अहंकार को मन में लय करते हैं तो 17 ही चीज हो जाते हैं। तो आज का स्वाध्याय भी बड़ा विचित्र ही हुआ है, हैं? नहीं, ये तो कई बार आप लोगों ने सुना है, तो भूल जाते हो, इसीलिए फायदा होता है। तो बताया क्यों, झोला क्यों सुना? अभी तो समय है भाई, इधर के उधर के में फर्क है। एवं आत्मानम आत्मनि स्वात्मनि गृहते असौ केन मननेन। कीदृशेन मननेन? स्वात्मभूत देहादि सु अन्नमयादि अशेषो उपाधि प्रविलापेन। चार उपाधि का लय करोगे तो एक बचेगा, तो उसको क्या कहेंगे? शेष उपाधि। वो भी विलय हो गया तो क्या हुआ? अशेष उपाधि, उपाधि शेष नहीं रहा। निर्विशेष, क्योंकि जब उपाधि नहीं रहा तो निर्विशेष हो गया, शेष रहेगा तो सविशेष हो गया, अशेष नहीं रहा तो निर्विशेष। उपाधि शेष रह गया तो सविशेष, उपाधि शेष नहीं रहा तो निर्विशेष। आत्मा के उपाधि एक बच गया तो आत्मा सविशेष, और आत्मा की कोई उपाधि नहीं बची तो आत्मा निर्विशेष। यही तो है, और क्या? निर्विशेष का मतलब क्या हुआ? बिल्कुल नंगी आत्मा, क्या समझे? वो अंडरवियर भी नहीं पहना है, बस टी शर्ट तो निकाला, कमीज भी निकाला, कमीज के अंदर का जो है गंजी वो भी निकाला, पैंट भी निकाला, अंडरवियर भी निकाला, तो शरीर क्या हुआ? दिगंबर हो गया। इसी तरह अन्नमय कोष भी निकाल दिया, प्राणमय कोष भी निकाल दिया, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष, आनंदमय, तो आत्मा बिल्कुल नंगी हो गई कि नहीं, बोलो? है? शरीर नंगा अच्छा नहीं लगता है, है? आत्मा नंगा सबसे बढ़िया वही है। आत्मा जब तक नंगा न हो, निर्विशेष जब तक न हो, नंगा न हो, दिगंबर न हो, तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, है? और शरीर को नंगा करोगे तो फिर तुम पतित हो जाओगे, आत्मा को नंगा करोगे तो तुम मुक्त हो जाओगे, बस। तो महत्व आत्मा को नंगा करने का है, निर्विशेष पूर्णानंदे। ये सविशेष में आनंद पूर्ण नहीं रहता, आनंदमय कोष रह गया तो सविशेष हुआ, सविशेष में आनंद तो है, पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है, बाधित होने वाली है। सविशेष में उपाधि एक, आनंदमय कोष उपाधि एक शेष रह गया, अन्नमय बाधित हो गया, प्राणमय बाधित हो गया, मनोमय विज्ञानमय बाधित हो गया, आनंदमय शेष रह गया, तो आनंद तो मिलेगा लेकिन अपूर्ण आनंद मिलेगा, बाधित होने वाला आनंद मिलेगा, खंडित होने वाला आनंद मिलेगा, पूर्ण आनंद नहीं मिलेगा। आनंदमय कोष को भी तुम बात कर दोगे तो अशेष हो गया उपाधि, अशेष हो गया तो पूर्ण आनंद, और क्या। स्वात्मनिव आत्मा अवगम्यते, वो क्योंकि तुम्हारा असली स्वरूप है इसलिए असली स्वरूप प्रत्येन गृह्यते अनुभूयते। केन तरी स्वरूपेण आत्मन्येव गृह्यते इत्यतः, साधन क्या है, ऊपर मनन तो बता दिया है ना, लेकिन मनन को सपोर्ट करने वाले और जो साधन हैं उसको अब बता रहे हैं, क्योंकि ये साधन के बिना वो मनन सफल नहीं होगा। इत्यतः सत्येना, तो सत्य के सहित मनन करना चाहिए। सत्येना, सत्य का अर्थ कर दिया, यथाभूत यथार्थ वचनेना, ये जो जैसा है वैसे ही, और भूत हितार्थ, समस्त प्राणियों के हित होने वाला वाक्य के प्रयोग से, किसी का भी अहित न हो। तुम बोलो ऐसा कि इससे किसी का अहित न हो, न तुम्हारा अहित हो, न तुम्हारी पत्नी का अहित हो, न तुम्हारे बेटे का अहित हो। सत्यम ब्रूयात, हितम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात, अप्रिय न बोलो, अहित का कोई किसी के लिए भी मत बोलो। भूतार्थ हित वचने न भूत हिते न सत्यम भूत हिते हितम प्रोक्तम, हाँ ये वाक्य है, इस वाक्य के आधार से तुम अपना इति स्मरणात्, इस वाक्य का स्मरण करो। तपसे न, तपसा माने तपसे इंद्रिय, इंद्रिय मनसा एकाग्र लक्षण है न तपस्य न, मन और इंद्रिय की एकाग्रता रूपी, एक रूपता रूपी तपस्या के द्वारा। मनसश्च इंद्रियाणां च एकाग्र्यं परमं तपम, शरीर को तपाने वाली तप से नहीं, उसे ये मनन प्रक्रिया भूत का बाध करने की प्रक्रिया में सफल नहीं होगे शरीर को तपाकर, ये तब से ही तुम सफल हो पाओगे उपाधियों का बात करने में। कौन से तब, मन और इंद्रिय की एकाग्रता। मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मना, ऐसी तपस्या। इति स्मरणात्, ये स्मृति का वाक्य है, इसे क्या सिद्ध हुआ, एनम आत्मानम यो अनुपश्यन्ति, तो इस तपस्या और सत्य का आश्रय लेते हुए अशेष उपाधि पंचकोश आदि अशेष उपाधियों का प्रविलाप करते हुए इसी पंचकोश के अंदर छुपा हुआ आत्मा को अपरोक्ष अनुभव करना चाहिए। जैसे जमीन के अंदर छुपे हुए पानी को खनन के द्वारा ग्रहण किया जाता है, दूध में छुपे हुए घी को मंथन के द्वारा ग्रहण किया जाता है, अग्नि में लकड़ी में छुपे हुए अग्नि को अरणि मंथन के द्वारा ग्रहण किया जाता है, तेल में छुपे हुए तेल को पीड़न द्वारा कोलू में ले जाकर मशीन में पीड़न करके ग्रहण किया जाता है, इसी प्रकार से शरीर में छुपे हुए उस परमानंद को, आत्मा को मनन के द्वारा ही ग्रहण किया जा सकता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।